ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2081 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से पारित। कल से हल्की बारिश की संभावना। कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ा तापमान घटेगा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीनों में 13,56,61,00,00,00 रूपये का प्रवासी रूपया आया है, राष्ट्र बैंक के आंकड़े। और ऑस्ट्रिया के गजर शहर के एक स्कूल में गोलीबारी, कम से कम 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2081 पारित किया गया। सिंहदरबार में आज हुई समिति की बैठक ने विधेयक को सर्वसम्मत रूप से पारित किया। ये जानकारी समिति के सभापति रामहरि खतीवड़ा ने दी। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर उत्तीर्ण 114 छात्रों को आज दीक्षांत समारोह में सम्मानित किया गया। जनकपुर धाम में आयोजित पहले दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले 3 वर्षों से उत्तीर्ण छात्रों को दीक्षित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने विश्वविद्यालय में उच्च अंक प्राप्त करने वाले 4 छात्रों और विभिन्न संकायों तथा शैक्षिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 छात्रों को पदक प्रदान किए। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल ज्ञान और अध्यात्म का केंद्र है और उन्होंने विश्वास जताया कि दीक्षित छात्र विश्व के किसी भी नागरिक के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल पूर्वीय दर्शन, ज्ञान और विज्ञान का भंडार है और देश व समाज में परिवर्तन में इन छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह ने दीक्षित छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ने की प्रक्रिया जारी है। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने नेपाल को एआई और सूचना प्रविधि का हब बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आयोजित मानव विकास रिपोर्ट 2025 साझा तथा नेपाल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की संभावनाएं, चुनौतियां और नीतिगत दिशा निर्धारित करने के लिए आयोजित उच्च स्तरीय चर्चा कार्यक्रम में बोलते हुए मंत्री गुरुंग ने कहा कि एआई का उपयोग समावेशी, न्यायसंगत और जवाबदेह तरीके से होना चाहिए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल को सक्षम दवाओं के मूल्य निर्धारण पर सुझाव देने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम में समिति के संयोजक डॉ. पुष्पराज पांडे ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि इसमें हर 2 साल में दवा मूल्यों के समायोजन का सुझाव दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद मंत्री पौडेल ने कहा कि लंबे समय तक दवा मूल्यों का गहन अध्ययन न होने के कारण ये रिपोर्ट दवाओं की गुणवत्ता सुधारने, प्रबंधन और सुशासन स्थापित करने में मददगार साबित होगी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि पार्टी समाजवादी क्रांति को नए चरण में ले जाने के साथ साथ पिछली गलतियों और कमजोरियों को सुधारते हुए जनता के साथ फिर से जुड़ने पर काम करेगी। आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि माओवादी केंद्र सुशासन, सामाजिक न्याय और समृद्धि के अभियान में लगा हुआ है। अध्यक्ष प्रचंड ने यह भी बताया कि पार्टी में समायोजित होने वाले सदस्यों को उचित जिम्मेदारी दी जाएगी। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय और जीवन विज्ञान प्रतिष्ठान के संयुक्त आयोजन में आज सिंहदरबार स्थित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि योग अभ्यास जीवन को समझने और मनन करने में सहायक होता है। उन्होंने ये भी बताया कि योग के माध्यम से दैनिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इस कार्यक्रम में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि कल से हल्की बारिश की संभावना है। कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण उपत्यका, तराई, मधेश सहित अधिकांश स्थानों में तापमान बढ़ गया था, लेकिन विभाग ने सूचित किया है कि कल से तापमान घटने की संभावना है। विभाग के मौसमविद प्रतिभा मानंदर ने बताया कि वर्तमान में देश के पश्चिमी और मध्य भागों में पश्चिमी हवा और स्थानीय हवा का प्रभाव है, जबकि कोशी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मानसूनी हवा का असर देखा जा रहा है। सुरखेत की चिंगाड़ गांवपालिका को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित पालिका घोषित किया गया है। गांवपालिका के अध्यक्ष बोध विक्रम जीसी ने बताया कि सभी वार्डों के 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सभी आवश्यक नियमित टीके लगाए जाने के बाद चिंगाड़ को पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित घोषित किया गया। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 के पहले 10 महीनों में नेपाल को प्राप्त होने वाले प्रवासी रुपए रेमिटेंस में 13.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आज जारी देश की आर्थिक स्थिति संबंधी ताजा रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कुल 13,56,61,00,00,00 रुपए का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की समान अवधि में रेमिटेंस प्रवाह में 16.9% की वृद्धि हुई थी। विशेष रूप से बैशाख माह में अकेले 1,65,30,00,00,00 रुपए का रेमिटेंस प्राप्त हुआ, जबकि पिछले वर्ष इसी महीने में 1,15,99,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, अक्षांश में 10.5% की वृद्धि हुई, जो 9 अरब 96 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में डॉलर रेमिटेंस में 14.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रिया के गजर शहर में आज स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे गोलीबारी की घटना हुई। गजर के मेयर एलके कार ने कहा कि गोलीबारी में 10 लोगों की मौत हुई है। मृतकों में स्कूल के कई स्टूडेंट शामिल हैं और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्कूल के पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने अपने स्पेशलिस्ट कोबरा टैक्टिकल यूनिट को भी तैनात किया है, जो हमलों और बंधक बनाए जाने वाली स्थितियों से निपटती है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नागरिकता आयन 2063 को संशोधन करने के लिए बने विधेयक 2081 राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से पारित। कल से हल्की बारिश की संभावना। कुछ दिनों से बारिश न होने के कारण देश के अधिकांश हिस्सों में बढ़ा तापमान घटेगा, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीनों में 13.56 अरब रूपये का प्रवासी रूपये आया है राष्ट्र बैंक का आंकड़ा। और ऑस्ट्रिया के गजर शहर के एक स्कूल में गोलीबारी, कम से कम 10 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।